ओम शांति। आज हम जो लास्ट संडे मुरली चली थी, समर्थ संकल्पों का खजाना ज्ञान मुरली, तो जो बाबा की अव्यक्त मुरली चली थी उस पर आज मनन चिंतन करते हैं। और कैसे वो मुरली, रोज की मुरली ही हमारे जीवन का अंग बन जानी चाहिए। अर्थात बाबा ने लास्ट टाइम बताया था ना, एक है सुनना, एक है समाना और फिर स्वरूप बनना। तो सुनते तो हम सभी हैं, है ना, अच्छा भी लगता है, सुनते हैं तो बाबा की मुरली अच्छा लगता है ना, पर समा लें उसको हम, है ना, और फिर उसका स्वरूप बन जाए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना कैसे कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं हम अपने साथ। हमने खाना खाया, खाना खा लिया तो खाना खाने से ताकतवर हो गए क्या? ताकतवर हुए क्या? नहीं हुए ना। खाना खा के उसको फिर पचाना पड़ेगा ना, और पचा करके फिर क्या करेंगे, फिर उसका खून बनेगा, और खून बनेगा, अगर खून बन गया और उसके बाद अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की, थोड़ा आगे आ गया जाओ, सभी भाई भाई लोग सभी आगे आ गया जाओ, तो एक माइक भी देंगे फिर आपको ना, कोई बात हो तो आप संजय भाई एक माइक भी यहां रख दो ना, किसी को कोई बात पूछनी हो तो आगे आ जाओ, सभी आगे वाले सोफे पे भी आ सकते हो, आगे आ गए जाओ, पीछे से उठने वाले आगे आ जाओ, बीच में सीटें खाली ना छोड़ो, आ जाओ। तो देखिए यहां पे माइक रख दो, इधर ना यहां पे रख दो। तो हमें अगर जैसे हमने खाना खा लिया, अगर उसके हमने खून भी बन गया और हम सोते रहे, खाना खा लें और पचा भी लें किंतु उसको हम एक्सरसाइज ना करें, तो क्या हमारी मसल्स में आएगा? क्या हमें ताकत मिलेगी उससे? क्या हमारी हड्डियां मजबूत होंगी? क्या हमारी मसल्स ताकतवर बनेंगी? नहीं बनेंगी। जब हम काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो शरीर में ताकत आएगी, है ना। तो इसी तरह से सपोज हमने खाना खाते हैं, हम चबाते हैं, पहले तो खाने को खूब चबाना होता है ना, खूब चबाते हैं। अगर हम खाना चबाते हैं, मैंने पहले भी शेयर किया था, हम जो खाने को खूब चबाते हैं, इतना चबाते हैं कि निगलना ना पड़े, कि वो उसमें 100 ग्राम खाने में 200 ग्राम जूस मिल जाता है, लार मिल जाती है, और 100 ग्राम 300 ग्राम पेट में आता है ना, तो पेट 100 ग्राम में ही भर जाता है। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो क्या होगा, बिना कम चबाएंगे तो 200 ग्राम खाना खाएंगे, है ना, और ज्यादा करेंगे तो 250 ग्राम खाना खाएंगे, और फिर डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा ना, मोटापा बढ़ेगा, कई और बीमारियां आएंगी। तो इसी तरह से हम कई बार कहते, मुरली तो हम सुनते हैं, किंतु मुरली सुनकर के हम अगर हमने प्रैक्टिकल में नहीं लाया, बाबा ने कहा तुम शांत रहो, जैसे आज की बाबा ने कहा प्रेम से भरपूर गंगा बनो, अगर हमने सुन लिया, 10 बार सुन लिया, 10 बार पढ़ लिया, किंतु प्रैक्टिकल में प्रेम स्वरूप नहीं बने तो क्या होगा? फिर भी मन में दूसरों के प्रति हम घृणा भाव रखें, दूसरों के प्रति दूसरा स्वार्थ का भाव रखें, तो फिर क्या होगा? जो बाबा ने डायरेक्शन दी हम वो तो नहीं बने। आज बाबा ने कहा बेगमपुर के बादशाह बनो ना, स्वस्थिति में रहो, श्रेष्ठ स्थिति में रहो, तो अगर हम श्रेष्ठ स्थिति में रहे तो हम बेगमपुर के बादशाह बनेंगे ना। अब प्रैक्टिकली हमने बेगमपुर का बादशाह 10 बार फील कर लिया, किंतु क्या हम बेगमपुर के बादशाह बने? आज का वरदान था, देहभान की बात थी ना, वो स्लोगन था आज का ना, देहभान। तो देहभान में छोड़ा, खाली पढ़ लिया, बोल लिया, आपस में चर्चा भी कर ली, और प्रैक्टिकल में नहीं छोड़ा तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं ना। इसी तरह से जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी आपसे, किसके 4 स्टेप हैं, 4 मतलब जब भी हम कोई मुरली सुनते हैं उसके 4 स्टेप हैं। तो पहले होता मनन, मन में रिवाइज करना, अंदर अंदर मन मन में रिवाइज करो। जब हम मन मन में मुरली को अंदर बहुत प्यार से गहराई से रिवाइज करते हैं ना, तो क्या होता है उसका, उसको उससे किसकी मुरली है, किसके महावाक्य है, किसने कहा मुझे, है ना, कोई दुनिया में कोई बड़ा आदमी भी कुछ कहता तो हम सुनते हैं, तो उसकी बात को अंदर अंदर बार 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 रिवाइज करो। कितनी बार रिवाइज करें,
चार्ज की मुरली कितनी बार हुआ इसकी, कितनी बार हुआ इसकी? संडे की मुरली कितनी बार रिवाइज की? जिसने 10 बार रिवाइज की हाथ उठाओ। संडे की मुरली जिसने 10 बार रिवाइज की, संडे वाली मुरली जिसने 5 बार रिवाइज की हाथ उठाओ। जिसने 2 बार रिवाइज की हाथ उठाओ। 2 वाले ज्यादा है ना, तो एक्चुअली होनी तो चाहिए 100 बार रिवाइज ना। बाबा ने कहा श्वासोश्वास ना, श्वासोश्वास कहा ना। आज बाबा ने क्या कहा था, आज की मुरली में क्या कहा था? मैं चलता हूं मुरली के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट मुरली के ऊपर ही चलते हैं, ताकि मुरली के एक पॉइंट को हम गहराई समझे कि तू मनन वाला रिवाइज करना, चिंतन वाला गहराई में जाओ और गहराई में जाओ कि बाबा मैं कैसे बनूं। ये अंदर चिंता लगाओ, चिंता तो नेगेटिव है, चिंतन पॉजिटिव है कि बाबा जो जो महावाक्य कहता है वो हमारे प्रैक्टिकल स्वरूप में बनने के लाने के लिए कहता है, खाली थ्योरी के लिए नहीं कहता है, कि सुनाने के लिए नहीं कहता है, प्रैक्टिकली बनने के लिए कहता है ना। तो हम उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाए तो उसका, तो बाबा ने जैसे हमें ये जैसे जो मुरली का जैसे मन रिवाइज किया, फिर चिंतन बाबा मुझे तो बनना ही है, मुझे तो बनना ही है, क्योंकि अगर बाबा के आज्ञाकारी बनेंगे, वफादार बनेंगे, सपूत बच्चे बनेंगे, तभी तो वर्षा मिलेगा। आज बाबा ने कहा ना मुरली में, आज की मुरली में था कि वर्षा मैं देता हूं, बाप बच्चों को वर्षा देता है, किंतु किनको देता है? तरीका क्या है? जो बाप को याद करते हैं उनको वर्षा देता हूं, ठीक है ना। और कितना देता हूं? जो जितना याद करते हैं उतना अधिक वर्षा देता हूं, है ना। तो ये बाबा ने बात कही ना, तो हमने अब वर्षा लेना। वर्षा क्या चीज है? वर्षा क्या प्रॉपर्टी? तो संगम युग की प्रॉपर्टी क्या है? संगम की प्रॉपर्टी क्या है? ये मुरली, बाबा की मुरली। तो ये मुरली मतलब मैंने सुन तो ली कि तू मेरे जीवन में समा जाए, मेरे जीवन में आ जाए, मुझे याद रहे, कर्म करते समय अटेंशन रहे कि आज बाबा ने क्या कहा था, क्या मैं ऐसे कर्म कर रहा हूं, क्या मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्या मैंने अपने अंदर तक उसको समा लिया है ना। तो वो प्रैक्टिकल उसका फिर बने ना, और फिर स्वरूप में आ जाए, कर्मों में दिखाई दे, दूसरों को भी दिखाई दे कि हाँ सचमुच ये व्यक्ति ने मुरली सुनी और ये बाबा की श्रीमत पे चल रहे, ठीक है ना। तो इसका जैसे मनन माना रिवाइज करना, चिंतन माना मुझे करना ही है, और फिर मंथन माना, और उसको हम बारीक में चले जाएं, बारीक बाबा कैसे बनूं। बाबा आप कहते हो मैं ऐसा बन जाऊं, मैं बेगमपुर का बादशाह बन जाऊं, मैं बनना चाहता हूं, कि तू कैसे बनूं बाबा, इतनी चिंताएं हैं, इतनी जिम्मेवारियां हैं, इतने मेरे को काम करने हैं, घर में इतनी जिम्मेवारियां हैं, बाहर इतनी जिम्मेवारियां हैं, अगर हम समर्पित हैं तो हमारी इतनी जिम्मेवारियां हैं, हम क्या करें, कैसे करें। तो वो सब बातें फिर उसकी गहराई में चले जाओ, फिर बाबा से इतने कनेक्ट हो जाएंगे, बाबा टच करेगा, बच्चे तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। बाबा कहेगा बच्चे तुम सब मिश्र मेरे ऊपर सौंप दो, मेरे से कंबाइंड हो जाओ, जब मेरे से कंबाइंड हो जाओगे तो अपने आप ही काम तुम्हारा हो जाएगा, है ना, क्योंकि सर्वशक्तिमान से कंबाइंड हो गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम आराम से कर पाओगे। और फिर जब हम ऐसा कर लेंगे, फिर इसका सिमरण माना, जितनी बार 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 हम करेंगे, फिर काम करते समय, कार्य करते समय उसको हम अटेंशन रखें कि बाबा ने जो कहा था, जो बाबा ने ट्रिक दी है, जैसे बाबा ने कंबाइंड होकर हर काम करो, तो मैं देखो कि मैं कंबाइंड होकर कर्म कर रहा हूं, बाप के साथ कंबाइंड हूं, ये बाबा की डायरेक्शन फॉलो करने के लिए कंबाइंड हूं। तो अगर बाबा के साथ कंबाइंड होकर करेंगे तो कर्म सहज हो जाएगा। और फिर जितना हम उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे, बाबा ने कहा सिमर सिमर सुख पाओ, तो फिर जितना बार उसको याद रखेंगे और कर्म करेंगे तो हमारे प्रैक्टिकल स्वरूप में आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे हमने बताया, मैंने बताया खाना खाने की जिसमें बात कर रहा था, हमने खाना चबाया, चबा चबा के उसको इतना चबाया कि निगलना नहीं पड़ा, आराम से चला गया, पेट में 3 घंटा रहा, 3 घंटा उसको और बारीक किया गया एसिड जूस के साथ, फिर छोटी आंत में फिर और बारीक किया गया, उसमें लीवर के जूस मिले, पेट के जूस मिले, पेनक्रियास से जूस आए, फिर वो इतना इतना तैयार हो गया कि पचने के लिए तैयार हो गया। और जब पचने के लिए तैयार हो गया, फिर उसको हमने बचाया, खून में मतलब खून का पार्ट बनाया, जब खून में आ गया, उसका पहले हमारी फैक्ट्री में गया जहां खून बनता है, फिर खून बनने के बाद हमने क्या किया, खून बनने के बाद उसको हमने एक्सरसाइज की, वॉकिंग की, है ना, और हमने मेहनत की, तो हमारी सारी मजबूत, हमारी हड्डियां भी मजबूत हो गई, जोड़ भी मजबूत हो गए, मांसपेशियां भी मजबूत हो गई, लीवर भी मजबूत हो गया, हमारा हार्ट भी मजबूत हो गया, दिमाग भी मजबूत हो गया, है ना। अगर हम उसको यूज ही ना करते स्वरूप नहीं बनते। तो इसी तरह से हम जैसे आज की मुरली थोड़ा संडे की मुरली को समझते हैं, तो व्यर्थ को समाप्त करने का साधन समर्थ संकल्पों का खजाना ज्ञान मुरली। पीछे पंखा नहीं गए, एक पीछे तो पंखा कोई लगा दो तो बहुत पंखा कोई है तो ना। अच्छा जी सुनिए, आज बाप दादा संगम योगी अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने आए, मतलब एक एक जो महावाक्य है बाबा का उसको बहुत गहराई से अनुभव करने की आवश्यकता है, बहुत गहराई से। जैसे बाबा मुझे, ब्राह्मण का मतलब ही क्या है, ब्राह्मण माना हम बाप दादा की गोदी में बैठे, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोदी में बैठे, ब्राह्मण शब्द का मतलब ही क्या है। और हमने प्रैक्टिकल में स्वरूप बनके दिखाया है, जैसे हम सब, हमारी आदत बन गई ना अब तो 3:30 बजे उठने की, भले हम 1 बजे भी सोएं, कई बार हम 2 बजे ही सोते हैं, कई बार हम तो डॉक्टर के माफी हमको क्या कभी 2-2 बजे तक भी काम करना पड़ता है, 2 बजे ही सोएंगे जी और फिर भी 3:30 उठ जाएंगे, आदत पड़ गई ना, स्वरूप बन गए ना। बाबा ने जैसे हम लोग पहले सब कुछ करते थे, बाजार का भी खाते थे, इधर का भी खाते थे, दूसर का भी खा लेते थे, सब कुछ कर लेते, अभी हम आदत क्या पड़ गई है कि हम बाजार का नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, किसी और के बना हाथ का बना हुआ नहीं खाते, है ना, आदत पड़ी नहीं पड़ी, मुरली सुनने की आदत पड़ गई, कैसा भी कुछ भी कितने बिजी हो, लेट भी हो रहे हो, फिर भी भाग दौड़ के मुरली में पहुंच जाएंगे, नहीं स्वरूप बने नहीं बने, बाबा का स्वरूप बने ना, बाबा ने जो कहा, बाबा कहता बच्चे मुरली कभी मिस मत करो, इधर उधर से ढूंढ के भी पढ़ लो, है ना, बाबा की मुरली में पहुंच जाओ, तो हम मुरली में पहुंच जाते हैं ना, फिर सोने के पहले गुड नाइट कर लेते हैं ना बाबा को, भले आलस में ही करें कर लेते हैं ना, करते नहीं करते, तो कुछ चीजों का तो हम स्वरूप बन गए ना, कुछ चीजें तो हमने मान ली ना और प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आ गए, बैच लगा लेते हैं, है ना, ये भी एक स्वरूप बन गए, है ना, कुछ हम कुछ ना कुछ तो मतलब अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, बोलते टाइम याद आ जाता है बाबा, बाबा याद आ जाता है ना, तो हमें अटेंशन तो बनी ना, तो हमने काम तो अपना शुरू कर दिया है ना। और बाबा का वचन जो भी हम में से कहीं पर भी है, चाहे वो यहां रहते हैं, चाहे वो घर गृहस्थ में रहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, वो बाबा की गोद के अधिकारी है, ठीक है, सूक्ष्म वतन के अधिकारी है। हमने पवित्र बन गए, हम मन में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, अब उसकी हमें महीनता में जाना है, तो हम बाबा का मतलब अब जैसे हम हमेशा फील करना चाहिए कि मैं आत्मा, सूक्ष्म शरीर माना, पवित्र बुद्धि पवित्र मन, मेरा जो बुद्धि को मैंने पवित्र, पवित्र बुद्धि का मतलब क्या है, जिस बुद्धि में ज्ञान समाया वो पवित्र बुद्धि है, जिस मन में, जिसमें विचार ज्ञान के चलते हैं, ज्ञान के ही विचार चलते हैं अंदर अंदर, तो वो पवित्र मन है, शुद्ध मन है। अब उसकी ग्रेड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारी ग्रेडिंग बढ़ती जाएगी, लेवल बढ़ता जाएगा, परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं पवित्र बुद्धि पवित्र मन से रहता हूं, हमेशा शुद्ध मन से रहता हूं और अपनी गलतियों को रियलाइज कर लेता हूं, तो मैं बाबा की गोद में जाने का अधिकारी हूं। मेरा सूक्ष्म शरीर लाइट का बना हुआ है और वो सूक्ष्म मन बुद्धि की यात्रा है ना, तो मन बुद्धि से हम बाबा की गोद में जा सकते हैं। तो मन बुद्धि से बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं और हमेशा ही फील करो कि बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुन रहे, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन ना बाबा के दिल में बैठे हुए, बाप दादा के दिल में बैठे हुए। बाबा जैसे आज्ञाकारी बच्चे कहां रहते हैं, सपूत बच्चे कहां रहते हैं, मां बाप के दिल में रहते हैं, कोई सूक्ष्म वतन कोई स्थूल चीज तो नहीं है, साक्षात्कार की जगह है ना, तो बाबा की दिल में हम बैठे हैं, मतलब हम सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, ठीक है। तो आज बाप दादा संगम योगी अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने के लिए आए, ये अलौकिक मिलन है, किसका मिलन है, हम देहधारियों का मिलन नहीं है, हम जो आत्माएं हैं अपने सूक्ष्म शरीर माना, लाइट के शरीर माना, पवित्र बुद्धि पवित्र मन पवित्र संस्कार रूपी चोले में बैठे हुए सबके सब, और हम बाबा, हमसे कौन, बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में, जिसकी भी बुद्धि और मन संपूर्ण पावन सत्व प्रदान है, तो बाबा उसके शरीर में आकर के हमको मुरली, कोई भी बहन सुना रही है, कोई भी भाई सुना रहा है, वो महसूस करो कि बाबा उसके अंदर आके बैठे हुए, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा उसके अंदर आके बैठे हुए, और हम वहां बैठ करके क्लास में कहीं भी नीचे बैठे ऊपर बैठे, महसूस करो कि हम उस, ये हमारी महफिल है, सामने बाप दादा बैठा है और हम उसके गोद में ही बैठे समझो, और बाबा हमको लोरी सुना रहा है, मुरली सुना रहा है ना, तो यह रूहानी महफिल रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते हो। सिर्फ संगम में ये महसूस करते जाना चाहिए अंदर से ना, महसूस करते जाओ। आत्माओं से परमात्मा का मिलन, ये श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा, ये सिर्फ अभी ही हो सकता है, फिर सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा, ये सिर्फ अभी पॉसिबल है। परमात्मा से मिलन सिर्फ अभी हो सकता है, तो इसका कितना नशा होना चाहिए हमारे अंदर ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाबा ने 8 बातें बताई थी उस दिन, याद है, इस युग की 8 बातें बताई थी। ये कैसा युग है, महान युग है। क्या है? महान युग है, महामिलन का युग है। हम आपस में तो मिलते हैं, देवता देवताओं से मिलेंगे, अभी मनुष्य मनुष्यों से मिलते हैं, रिश्तेदार रिश्तेदारों से मिलते हैं, किंतु अब हम किससे मिल रहे हैं? आत्मा परमात्मा से मिल रही है ना। और आत्मा परमात्मा मिलने से क्या होगा, क्या होगा? आत्मा के अंदर जो भी 63 जन्म से पाप कर्म किए ना, वो सारे भस्म हो जाएंगे, क्योंकि महामिलन, महामिलन का युग है और सर्व प्राप्तियों का युग है। जो आत्मा के सातों एनर्जी हैं, ज्ञान, ज्ञान मतलब समझ, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियां, ये सातों की सातों एनर्जी से आत्मा भरपूर हो जाएगी। बाबा कहते हैं क्या हमारी प्राप्तियां कौन कौन सी हैं? ज्ञान, गुण और शक्तियां। ज्ञान माने समझ, सत्य की समझ एक तो हमको अंदर आ गई। जितना सत्य की समझ को हम जीवन में प्रैक्टिकली यूज करेंगे, हमारे जीवन पवित्रता आती जाएगी। पवित्रता गुण है, शांति गुण है, प्रेम रूहानी प्रेम भी गुण है, अतिंद्रिय सुख भी गुण है, आनंद भी गुण है। जब इन गुणों को जीवन में, इस गुणों के साथ व्यवहार करेंगे लोगों के साथ, अपने साथ और लोगों के साथ, तो हमारे लिए शक्ति आएंगी। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान का जितना मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाओगे, उससे गुण बनते जाएंगे, आपका जीवन में गुण आते जाएंगे, गुण माना पवित्र होते जाएंगे, शांति अंदर शांति आती जाएगी, व्यवहार में रूहानी प्रेम दिखाई देगा, और फिर अतिंद्रिय सुख के अंदर अंदर अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करते रहोगे, मतलब बाबा की गोद का अनुभव करते रहोगे, आनंद माना बाबा से लवलीन स्थिति में टिकते, बाबा से लवलीन स्थिति का अनुभव करते रहोगे। और जब इस बाबा से अतिंद्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे, उस अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, आनंद के झूले में झूलते रहेंगे, तो हमारे अंदर शक्तियां आती जाएंगी, सत्य को परखने की शक्ति आ जाएगी, 1 सेकंड में सही निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी, पहाड़ जैसी समस्या को राई बनाने की शक्ति, मतलब विस्तार को सार बनाने की शक्ति, मन बुद्धि को हटा करके, इस देह और देह की दुनिया से हटा करके हम किस में लगा देंगे? आत्मा और परमात्मा की दुनिया में लगा देंगे। सविस्तार क्या है? ये देह और देह की दुनिया विस्तार है, और आत्मा और परमात्मा की दुनिया क्या है? सार है। सूक्ष्म परम धाम में कितनी जगह में आत्माएं रहती है? थोड़ी सी जगह में ना, अभी यहां कितनी बड़ी दुनिया है। तो वो ये देह और देह की दुनिया से हम मन बुद्धि को हटाते जाएंगे, ये विस्तार है, और सार माना आत्मा और परमात्मा की दुनिया, हमारा घर परम धाम। परम धाम में, शांति धाम में हमारी बुद्धि और मन लगता जाएगा, तो ये विस्तार को सार बनाने की शक्ति, समेटने की शक्ति फिर आती जाएगी। समेटने की शक्ति माना क्या? मन बुद्धि को समेट के हम बिंदी आत्मा बन जाएंगे, और परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाएंगे। तो जब बाबा से कंबाइन महसूस करेंगे, यहीं बैठे बैठे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, तो क्या होगा? करंट आनी शुरू हो जाएगी। करंट माना ये फील होना शुरू हो जाएगा, मैं तो बिंदी आत्मा हूं, ये भी बिंदी आत्मा है, मेरी पत्नी भी बिंदी आत्मा है, मेरा पति भी बिंदी आत्मा है, ये मेरा बेटा भी बिंदी आत्मा है, मेरी पत्नी भी बिंदी आत्मा, मेरी बेटी भी बिंदी आत्मा है, मेरा नौकर भी बिंदी आत्मा है, मेरा बॉस भी बिंदी आत्मा है ना। हर एक के प्रति ये बिंदी आत्मा की फीलिंग आने लगेगी, ये करंट आनी शुरू हो जाएगी। नहीं पवित्र, फिर पवित्रता भी क्या है? बिंदी, मैं भी बिंदी, तुम भी बिंदी, एक बिंदी बाप के बच्चे हैं, है ना। शांति आनी शुरू हो जाएगी, हर बात को बिंदी लगा दो, जिसने कुछ कहा कोई बात नहीं, बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो, शांति हो गई। रूहानी प्रेम में उन्होंने यही क्या, मैं आत्मा शांत स्वरूप, तुम भी शांत स्वरूप, मैं भी प्रेम स्वरूप, तुम भी प्रेम स्वरूप, तो प्यार आ गया। अतिंद्रिय सुख माना मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी, है ना। बिंदी बाप अभी ब्रह्मा बाबा के धन में बैठा है, तो बस उसके साथ का कंबाइंड का अनुभव होने लग जाएगा, फिर लवली स्थिति का अनुभव, आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम समेटने की शक्ति से हमें करंट आनी शुरू हो जाती है, बिंदी बिंदी का अनुभव होने लगता है। हर बात में फुल स्टॉप लगना शुरू हो जाता है। यही करंट है, ये करंट हमें अंदर आने लगती है। जब करंट आने लगी तो सहन करना सहज हो गया, फिर सहन करने की शक्ति आ गई। जब बिंदु लगाना सीख गए, अपने को बिंदी समझ के दूसरे को बिंदी समझ के बिंदु लगाना सीख गए तो क्या हुआ, अब सहन करना सहज हो गया। पहले सहन करना बड़ा मुश्किल लगता था, अब सहन करने की शक्ति आ गई। करंट आया तो सहन करना सहज हो गया, समाना सहज हो गया। सहन करके समा लेते हैं, किसी को बोलते नहीं कुछ भी, अपनी कोई बात को कहने से कुछ फायदा नहीं होता ना, दस लोगों को बताओ कुछ मतलब नहीं ना, तो सहन करके समा लेना। जैसे सागर में पिता पत्थर मारा है ना, सागर ने क्या किया, रिएक्शन दिया क्या, रिएक्शन नहीं दिया ना, पत्थर सीधा कहां गया, तले में चला गया, पता ही लगा। अगर कोई बड़ा और बड़ा पत्थर मार दे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी कर लो, सहन कर लिया, संभाल लिया और सामना भी कर लो, और 50 पत्थर मारो क्या होगा, सागर को क्या नुकसान होने वाला, कुछ होने वाला है, क्योंकि हम सागर से कंबाइंड हो गए, तो सामना कर लिया। फिर उसके बाद कोई कहे कि अच्छा मुझे कुछ दो, तो सहयोग भी कर लिया, तो आठों शक्तियां आ गई है ना। यही हमारी प्रॉपर्टी है, यही हमारा वर्षा है। तो ये सातों एनर्जी हमारे अंदर आ गई। जितना ज्ञान से गुण आता है और गुण को जितना प्रैक्टिकली प्रयोग करते हैं उससे हमारे अंदर शक्तियां आती हैं। और जब शक्तियां आ गई तो क्या हुआ, अब ये प्रॉपर्टी आ गई। इस प्रॉपर्टी के साथ हम जब काम करते हैं, व्यवहार करते हैं दुनिया में, अपने अपने घर में या बाहर व्यवहार करते हैं, तो अब हम कौन से वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। अब हम इस दूसरों की सेवा करते हैं तो हम दूसरे हमसे प्रभावित होने लगते हैं, वो बाबा के बच्चे बनने लगते हैं, हमको हमारे चेहरे द्वारा महसूस होने लगता है, लोगों को चलन माना हमारे कर्म द्वारा महसूस होने लगता है, तो वो चेहरा और चलन सेवा करने लगता है और उसके द्वारा हमारी प्रजा बनती जाती है। बाबा के जहां जाते हैं, ऑफिस में जाएं, घर में हो, कहीं भी हो, लोग प्रभावित हो, हमारे आभा मंडल बड़ी हो जाती है और उसके असर में लोग बाबा के बच्चे बनते जाते हैं। तो बाबा के बच्चे खाली बोलने से नहीं बनते, भाषण करने से नहीं बनते, क्लास कराने से नहीं बनते, जब तक हमारा चेहरा माना हमारा मन नहीं बदले, जब तक हमारी चलन नहीं बदले, तब तक हमारे कर्मों में परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए ये जो युग है ये सर्व प्राप्तियों का युग है। अभी अगर आज विनाश हो जाए तो प्राप्ति का युग खत्म हो गया। अभी जब तक जितनी यहां तक हुई वही मानी जाएंगी, तो फिर है असंभव से संभव होने का युग। भले आपको कैंसर हो गया, भले आपको हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई, भले आपको ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, दुनिया कहती है इसका कोई इलाज नहीं है, किंतु सचमुच प्रैक्टिकली आप असंभव से संभव हो सकता है। आप सब तरह के रोगों से मुक्ति पा सकते हो, कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आई वो ठीक हो सकती है ना। खाली बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी चीज आपके जीवन में जो समझते हैं असंभव है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जो आपको तंग करता है, तंग करती है, वो आपका एक दिन दोस्त बन जाएगा है ना। जो आपकी गलानी करते हैं, रोज आपकी आपको बेइज्जती करने की कोशिश करते, इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपको एक दिन वही महिमा करने लगेंगे। असंभव से संभव होने का युग है ना ये, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग है। इसमें जैसी अनुभूति, भगवान से मिलने की अनुभूति, द्वापर युग में हमने कलयुग में इतनी तपस्या की, इतने जगह काम किया, एक सेकेंड ऐसे किसी को ऐसे थोड़ा सा साक्षात्कार हो गया, बस कितने खुश होते थे हम। कभी बाई चांस ऐसा फील हो गया, कितना खुश होते थे। और अभी तो सहज, जब चाहो सूक्ष्म धाम में उड़ गए, जब चाहो परम धाम में चले गए, जब चाहो सुख धाम में चले गए, कितना सहज है। अच्छा चलो अपनी दादियों को ही देख लो, दादियों से मिलते हैं, दादियों से भी वो फीलिंग आ जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सुना भी बाबा की मुरली को और समाया भी है और स्वरूप बन गई है अभी, तो उनके द्वारा हमको प्रैक्टिकली बाबा की फीलिंग आ जाती है ना। तो ये जो है, जैसे ये वाली फीलिंग आना, विशेष परिवर्तन का युग। कैसे भी आपकी हालत हो गई, कैसे भी अंदर से हो गया हो, कैसा भी आपके अंदर हमारे अंदर कैसे संस्कार पड़ गए हो, अब जो सबसे बड़ी बात क्या है, सभी बीमारियों का कारण क्या है, जल्दीबाजी करना, प्रेशर में आना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, चिंता करना, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेना, फील करके सोचते रहना, फिर भावुक हो जाना, थोड़ी थोड़ी बात में आंखों में आंसू निकलना, रोना आ जाना, ये आदत पड़ गई, गुस्सा करने की आदत पड़ गई, बात बात में चिड़चिड़ करने की आदत पड़ गई। अब ये आदतें जो पड़ गई, जो लगता है कि छूट ही नहीं सकती, बात बात में उदास होने की आदत पड़ गई है। जब देखो दूसरे को दोषी दिखाई देते हैं, इसको ये इसकी आदत छूटेगी, ये आदत इसकी बहुत खराब है, ये आदत इसकी बहुत खराब है। घर में किन की? अपने ही घर में जो हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, पति पत्नी होते हैं, बच्चे, इनकी इनकी आदतें खराब दिखती है ना, दोस्तों में दिखाई देता है, साथियों में दिखाई देता है। तो दोष देखने की आदत पड़ गई है, बदलने की भावना लेने आदत पड़ गई है ना। स्वार्थ कितनी आदत पड़ गई है, स्वार्थ में हम अंधे हो जाते हैं। भाई भाई के साथ स्वार्थ के साथ व्यवहार करता है ना। जो प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोर्ट में केस कर लेते हैं, झगड़े कर लेते हैं, नहीं करते हैं? सारे स्वार्थ के अंदर प्यार का कैसे खत्म हो रहा है? स्वार्थ के वश ना, अपने स्वार्थ के वश हम ऐसा ऐसा व्यवहार करते हैं, सामने वाला दिल खराब कर देते हैं। नहीं तो स्वार्थ के वश इतने स्वार्थी होने से आज सारा समाज स्वार्थी हो गया। इसलिए संबंधों में दृढ़ नहीं है ना, ताकत नहीं है। किंतु बाबा कहता है बच्चे ये विशेष परिवर्तन का युग है, इसमें आप अपने आप को परिवर्तन करके दिखाओ, सामने वाले भी अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। नहीं होंगे तो कोई चिंता नहीं है, किंतु आप तो अपने आप को परिवर्तन करके देखो ना। आज आज आपको हमें जैसे पहले था, हम सबको ही जो हम बाबा के बच्चे थे पहले, हमें क्रोध आता था, हम जल्दीबाजी करते थे, चिंता करते थे, बात बात में रोना आ जाता था। और अभी कम हुआ कि नहीं हुआ? खत्म नहीं हुआ, चलो कम तो हुआ ना। नहीं तो प्रैक्टिकली हम और अच्छे से गहराई करें, हम ऐसे ऐसे शांति के सागर बन जाए ना, प्रेम के सागर बन जाए ना, प्यार के सागर बन जाए ना। बाबा ने क्या कहा, प्रेम से भरपूर गंगा बनो। आज एक बहुत अच्छी बात बाबा ने मुरली में कही थी। बाबा ने कहा प्रेजेंट और एब्सेंट है ना, प्रेजेंट कौन है? अगर हम बाबा की याद में है तो प्रेजेंट है। एक दिन में कितने कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो हर मिनट हर सेकंड अगर बाबा की याद है ना, तो हम बाबा के पास प्रेजेंट है। सुना, किसके पास प्रेजेंट है? हमारी बाबा की गोद में हमें प्रेजेंट रहना है। नहीं तो बाबा की याद में है तो बाबा की गोद में प्रेजेंट है। बाबा की गोद में है हम लोग, प्रेजेंट है। और सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, सुबह मैंने आत्मा का दर्शन कर रहे हैं। बाबा हमको क्या करता है? टीचर के रूप में हमको सुदर्शन चक्रधारी बना देता है। तो बाबा की गोद में बैठे बाबा हमको क्या अनुभव कराता है? बच्चे देखो, तुम तो अभी परमधाम में थे, तुम ऐसे थे, तुम देवता बने तो ऐसे थे, तुम फिर द्वापर युग में आए ना, तो तुम क्या बन गए? तुम्हारी पूजा हो रही है, पूज्य स्वरूप में हो, मंदिर में तुम्हारी पूजा हो रही है ना। और फिर अभी ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप का मतलब क्या है? वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप। तो मेरी गोद में बैठे हो, गोद में बैठे क्या क्या बन रहे हो? ब्राह्मण गोद में बैठ क्या बनेंगे? अभी देखो तुम फरिश्ता बन रहे हो, और फिर परमधाम चले जाएंगे, मैं तुमको परमधाम ले जाऊंगा, फिर तुमको सत्युग में भेज दूंगा, देवता बन जाओगे। फिर तुम्हें क्या होगा? आधा कल्प खत्म होगा, तुम्हारी मूर्तियां पूजा शुरू हो जाएगी, तुम ही अपनी पूजा शुरू कर दोगे, है ना। फिर जब अंत आने का समय होगा, फिर तुम्हें मैं अपनी गोद में बिठा लूंगा, ब्राह्मण बना लूंगा, ब्राह्मण बना के फिर क्या करूंगा? फरिश्ता बना दूंगा। फरिश्ता बना के सारी दुनिया का कल्याण करके, सबको मुक्त करके, मेरे साथ सब मुक्त कर देना, सारी दुनिया को साक्षात्कार कराना, सबकी मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी, सब ऊपर फिर परम, मेरे साथ ऊपर चलना परम धाम में। तो बार 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 कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? बाबा की गोद में प्रेजेंट है ना, बाबा की गोद में प्रेजेंट है। और अगर हम बाप को भूल गए, याद नहीं है बाबा की, कोई देहधारी याद आ गया तो क्या हुआ? मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, मैं तो डायबिटीज का मरीज हूं, तो क्या हुआ है? गोद में एब्सेंट हो गए, है ना, एब्सेंट हुए कि नहीं हुए? तो ये जो है प्रेजेंट का मतलब, एब्सेंट का मतलब ये है कि बाबा की, बाप दादा की गोद में रहना है, हमेशा याद में रहना, गोद में रहना, है ना। और बाबा की श्रीमत याद रहे तो हम गोद में, बाबा की श्रीमत भूली तो हम एब्सेंट हैं। तो प्रेजेंट एब्सेंट का मैंने सुबह बड़ा अच्छा चिंतन चल रहा था कि प्रेजेंट का मतलब क्या है, एब्सेंट का मतलब क्या है ना। प्रेजेंट एब्सेंट है तो वर्षा नहीं मिलेगा, है ना। यहां तो हम बाहर है, अगर एब्सेंट है, बाबा की गोद में नहीं है, उसकी छत्र छाया के नीचे नहीं है, तो फिर तो माया बैठी है। या तो हम बाबा के हैं या तो रावण के हैं, आज की मुरली थी ना, या तो बाबा के हैं या तो रावण के हैं। अगर हम दूसरे से घृणा करते हैं, दूसरे से कंपटीशन करते हैं, हर चीज में अपने मैं करते हैं, तो क्या है हम कहां किसके बन गए? उसमें ब्राह्मण है क्या? उसमें ब्राह्मण ही नहीं है, हम ईश्वर के बच्चे ही नहीं है ना। तो इस तरह से अपने आप को गहराई समझने की बात है। अच्छा मैं तो मुरली का मेरे को तो एक लाइन दो लाइन में इतना ही मजा आता है कि एक दो लाइन में बहुत बहुत टाइम ही जैसे निकल जाता है ना। तो इसमें जैसे विश्व कल्याण का युग है, किसी का भी हम कल्याण कर सकते, सारे विश्व का हमें कल्याण करना, सबको लेकर सबको ले, खाली हमें खुद नहीं जाना है, खाली खुद को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं देनी, सारे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देनी, ये मेरी जिम्मेवारी है। एक्चुअली हम में से हर एक ब्राह्मण कम से कम 1,00,000 आत्माओं के लिए उत्तरदायी है। कितनी आत्माओं के लिए? हम कम से कम 1,00,000, अगर 9,16,108 देखो, अब उसको 750 करोड़ से भाग कर दो, 750 करोड़ को 1,00,000 से भाग करो, कितना, सॉरी 9,00,000 से भाग करो, कितना आंसर आएगा? हम में से हर एक आत्मा को कम से कम 1,00,000 लोगों के, हम 1,00,000 लोगों के पूर्वज हैं कम से कम। हम जो कुछ करते हैं 1,00,000 लोगों को उसका फर्क पड़ता है, उनको हमको फॉलो कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं वो लोग, ठीक है। प्रजा भी, जो प्रजा का दास दासी बनने वाला उसको भी देख रहे हैं, जो महाराजन बनने वाला उसको 750 करोड़ देख रहे हैं, है ना, सारा विश्व उसको देख रहा है। और जो 108 की माला मैंने, उनको तो बहुत लोग, उनको तो कम से कम कितने लोग देख रहे हैं, कम से कम एक एक, एक, एक को 5-5 करोड़ लोग देख रहे हैं 108 की माला वालों को ना, ठीक है। और बाकी 16,108 की माला में कितने लोग देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से डिवाइड करते जाओ, पता कर लो कि आप कौन सी श्रेणी में आना चाहते हो। तो अगर आप, हम एक गलत कर्म करते हैं, हमको देख उतनी आत्माएं गलत कर्म कर रही हैं, तो समझो कितना हिसाब किताब हो गया। तो हम अभी, हमें अभी, हम हीरो के व्यापारी हैं, हीरो के बिजनेसमैन हैं, तो आप सोचो कि अब बाबा का बनने के बाद 100 गुना का फर्क है ना। अब सबसे बड़ा पाप क्या होता है, अब जब बाबा का बनके कोई पाप करते हैं ना, कोई विकर्म करते हैं, तो क्या होता है, वो 100 गुना हो जाता है। 63 जन्म के जो पाप थे ना, वो तो थोड़े से हैं, कई बार मैं सोचता हूं कि वो तो बड़े आराम से कट जाते हैं। सबसे ज्यादा पाप कहां पर है, 84वें जन्म के पाप याद है बुद्धि में, है ना। बाबा का बनने के बाद एक एक पाप याद है, जहां जहां हमने अवज्ञा किया वो याद है, बार बार उभर उभर के आती है, बार बार उभर उभर के आती है, बार बार उभर उभर के आती है। वो पुराने वाले पाप याद नहीं आते हैं, ये वाले पाप जब याद करने बैठे वही पाप सामने आते हैं, जब याद करने बैठे जो अवज्ञा की थी वो बार बार याद आएगी, है ना। फिर जो 83वां जन्म पिछले जन्म में जब ज्ञान में आने से पहले जो पाप किए वो भी बुद्धि में याद रहते हैं। तो 84 और 83 जन्म के पाप सबसे ज्यादा है, खतरनाक है, उसमें बाबा का बनने के बाद ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हमेशा निरंतर याद चाहिए ये वाली, है ना। तो जब, तो ये बाबा का विश्व कल्याण का युग है और सहज वरदानों का युग है। पहले तो एक छोटा सा वरदान लेंगे, कितनी तपस्या करते थे हम, अभी तो बाबा रोज वरदान दे रहा है। तो इस तरह से जब लगन लगाएंगे इस युग में, महान पाटधारी तुम आत्माएं हो, और इसमें हम महान पाटधारी कौन है, हम बाबा के बच्चे बने, थोड़े से बच्चे बने। देखो अपने शहर में कितने लोग हो आप बाबा के बच्चे, एक सेंटर में कितने भाई बहन है, 100 भाई बहन है, क्लास में कितने लोग आते हैं, 100 आते हैं, 50 आते हैं, 20 आते हैं, 30 आते हैं, उस पूरे शहर में तुम 20-30 ही बाबा के बच्चे बने हो। तो कौन से, हम महान पाटधारी हैं, उस पूरे शहर की जिम्मेवारी आपकी है। आप 20 क्लास में आते हो, 20 लाख है उस शहर में, तो कितने हो गए, 1-1 लाख हो गए, नहीं हो गए। तो इस तरह समझो कि हमारे पूरे उस शहर की जिम्मेवारी हमारी, उस गांव की जिम्मेवारी हमारी है। उस गांव का मैं पूर्वज हूं, उस गांव का इष्ट देव हूं, उस गांव का कुल देवता हूं। इस फीलिंग से चलो, जब चलते हैं ना हम लोग गांव में चले, सड़क में चले, बच्चे भी हैं तो उस स्कूल में जाए, कहीं भी जाए, उस नशे में चलना चाहिए, है ना, कि मैं बाबा, मैं सब मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा, मैं विश्व की स्टेज पर हूं, सब लोग मुझे देख रहे हैं। फिर नींद आ सकती है क्लास में, बताओ, आप स्टेज में बैठे हो और आपको नींद आ सकती है, आप डांस कर रहे हो, आपको नींद आएगी क्या? देखने वाले को नींद आ सकती है, किंतु आपको नींद नहीं आ सकती, स्टेज वाले को नींद नहीं आ सकती ना। तो ये अटेंशन जब रहे तो फिर अपने आप ही हमारा परिवर्तन हो जाता है ना। तो हम महान पाटदारी, ऐसा महान नशा रहता है, सारा विश्व जिस बाप को एक सेकंड की झलक देखने की चाहत रखे, वह बाप सेकंड में अधिकार, बाप के सेकंड में अधिकारी बच्चे हैं। तो ये नशा अंदर से रहना चाहिए ना। तो बाबा ने जैसे कहा ना, अगर वैध संकल्प है वैध को समाप्त, वैध और समर्थ, ये मुरली जो है समर्थ है, समर्थ माना ये बाबा के महावाक्य है, ये जो समर्थ है ना, ये बाबा के अंदर जब हम बाबा के संकल्पों में रहते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं, बाबा से कंबाइंड हो जाते हैं। और जब हम एक वैध संकल्प आता तो क्या, सारी खुशी गायब कर देता है, एक नेगेटिव याद कर लो सारी खुशी गायब हो जाती है, नहीं होती है, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। क्योंकि हर विचार के लिए हमारे केमिकल बनता है थायराइड, यहां पर ब्रेन के कंट्रोल रूम में, और वो एक सेकंड से सारे से भी कम समय में सारे शरीर में फैल जाता है, उस एक एक सेल पे उसका असर पड़ता है। तो बाबा के साथ जब हम ये मुरली को बार 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 रिवाइज करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, बार बार गहराई में जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर इससे हम समर्थ बनते जाते हैं, हमारे अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा होते जाते हैं, हमारा जो रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव होता जाता है और जागृति पैदा होती है। जागृति माना हमारे अंदर ऐसी जागृति पैदा हो जाती है, मतलब हमारी सेल्स में सेल्स एक्टिव हो जाती है, फिर हमें नींद नहीं आती है, फिर अलर्ट रहते हैं और चातरक बन के एक चीज को अंदर समाते जाते हैं। और मुरली एक बार सुन ली फिर सारा दिन बजती रहती है, साथ अपने आप ही बजती रहती है, हमारे अंदर तो अपने आप ही मुरली बजती रहती है, बार 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 बजती रहती है। आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा, नहीं ध्यान आता तो थोड़ी सी बात नहीं तो तुरंत जेब में रहते हैं मुरली, निकाल के तुरंत देख लेंगे। तो मुरली तो कितनी बार पढ़नी चाहिए, कम से कम 100 बार पढ़नी चाहिए, है ना? कितनी बार? जो अष्टतन बनते हैं उनको श्वासों श्वास मुरली याद रहती है, बाबा और मुरली याद आती है, और जो 108 की माला में आते हैं उनको कम से कम 100 बार मुरली याद आती है। कम से कम 100 बार मुरली के महावाक्य तो याद आने चाहिए, कोई ना कोई महावाक्य बार बार याद आना चाहिए, है ना? दुनिया की कई बातें याद नहीं आनी चाहिए, इस माँ ने ये कहा, बाप ने ये कहा, उसने उस आदमी ने कहा, उस आदमी ने कहा, ये नहीं, बाबा ने क्या कहा, दुनिया वालों कहा हुआ व्यर्थ है, नेगेटिव है, कि तो जो बाबा ने कहा वो समर्थ बनाने वाला है, दुनिया वालों का कहा हुआ वो आपको व्यर्थ और नेगेटिव बनाने वाला है, कमजोर बनाने वाला है, और जो बाबा ने कहा वो आपको क्या बनाने वाला है, शक्तिशाली बनाने वाला है। सुना? तो ये बाबा ने जैसे कहा, समर्थ संकल्प वाले जो सोचेंगे वो ही करते हैं, और समर्थ सोचने वालों के संकल्प कैसे होते हैं, धैर्यवत स्लो होते हैं, उनमें धैर्य होता है, और जो सोचते हैं, सोचते क्या है, वो अपने नहीं सोचते हैं, बाबा उनको टच करता है। जैसे दादियां जो सोचती हैं, हमें याद है दाबड़ी दबड़ी दादी जब थे 2002 में एक में दादी ने बोलना शुरू किया, एक एक लाख के प्रोग्राम करो, एक एक लाख के दादी रोज मुरली में आए, क्या बोलती थी दादी, आनंद भाई क्या बोलते थे, एक एक लाख के प्रोग्राम करो। यज्ञ में इतने पैसे नहीं थे, सब सेंटरों में इतने पैसे नहीं थे, पर दादी ने कहा एक लाख के प्रोग्राम करो। सब लाख भाई बहन सोचते थे, पता है दादी जी ऐसे क्यों बोलती है, एक लाख का प्रोग्राम करने में बहुत पैसे लगते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे तो कहां से पैसे आएंगे। वो सचमुच दादी ने बाबा ने दादी को टच किया था, और दादी बोलती थी, हमें बड़ा अजीब सा लगता था सबको, कैसे कैसे हो सकता है, सब जगह हर जोन में एक लाख के प्रोग्राम करें। वो सचमुच बाबा ने हर जोन में एक लाख के प्रोग्राम करा दिए, और जोन क्या सब जोन में करा दिए, फिर छोटे सेंटर्स में भी हो गए, है ना, सारे भारत में धूम मच गई, फिर विदेश में भी हो गए, विदेश में लाख के नहीं तो 5-5 हजार के तो हो गए, 2-2 हजार के तो हो गए, ये पॉसिबल लगता नहीं था। तो बाबा के बच्चे जब समर्थ बन जाते, जब बाबा की मुरली के स्वरूप बन जाते हैं, तो बाबा उनको द्वारा टच करता है, जिनकी मन बुद्धि बाबा को समर्पित कर देते हैं बाबा उनको टच करता है, फिर अपने हिसाब से नहीं चलते, वो दादियां हमारे अपने हिसाब से नहीं चलती हैं, बाबा उनको टच करता है, फिर वो ही वो बोलती है, उनको वही संकल्प आता है। दादी रोज एक बोलती थी, मेरे को रोज अमृत वेले ही संकल्प आता है, 1 लाख का प्रोग्राम होना चाहिए, 1 लाख का प्रोग्राम होना चाहिए, 1 लाख के प्रोग्राम होना चाहिए, हर जोन में होना चाहिए, और वो दिस प्रैक्टिकली हुआ, है ना? तो ये जो जो बातें जो बाबा, फिर हम सचमुच दादियों जैसे ही, हम अगर प्रैक्टिकली दादियों के समान मुरली का स्वरूप बन जाए, ये जो समर्थ बाबा के जो मुरली है, महावाक्य है, इसका स्वरूप बनते जाएंगे, सुन के समाते जाएंगे, उसका स्वरूप माना प्रैक्टिकल कर्म में लाते जाएंगे, तो फिर हमारे अंदर ये उसका हम स्वरूप बनते जाएंगे, और उससे जो क्या होगा कि हमारे संकल्प धैर्यवत हो जाएंगे, और हर संकल्प कर्म में बदल जाएगा, सफल होगा, सफलता स्वरूप बनते जाएंगे, और जितनी सफलता स्वरूप बनते जाएंगे उतनी खुशी आती जाएगी, और दुनिया वाले भी आपके द्वारा क्या होगा, दुनिया वालों को साक्षात्कार होंगे, दुनिया वाले आपके सामने इसी संकल्प को लेकर के आएंगे, उनको फील होगा, और वो तुरंत परिवर्तन होते जाएंगे, है ना? तो मैं समझता हूं टाइम तो हो गया है। तो बाबा ने कहा दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो, बाबा ने कहा था ना, ये बात थी ना जैसे कि भी आप जो है 3 स्टेजेस है ना, सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बगैर रह नहीं सकते हैं, यह भी स्टेज है, ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय बहुत सुनने की इच्छा होती है, सुनने का रस मिलता है, उसके कारण उस समय उसी रस की मौज में रहते हैं, सुनने में मस्त भी रहते हैं, बहुत अच्छा भी करते हैं, ये गीत भी खुशी से गाते हैं, लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो रस भी समाप्त हो जाता है, ठीक है ना? और समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को उस बुद्धि के समर्थ संकल्प को संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आता रहता है, क्योंकि पुराना 90% व्यर्थ भरा हुआ है, नेगेटिव भरा हुआ है। अगर हमने समाया नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, वो व्यर्थ और नेगेटिव बार बार वो लोग हमारे आसपास हैं जिन्होंने हमारे साथ व्यर्थ किया है, नेगेटिव किया है, बार बार हमको वही बढ़ता रहेगा। तो जो बाबा से सुना है ना उसको संभालो। संभालने का तरीका क्या है, मनन करना, बार बार रिवाइज करो, चिंतन करो, मुझे बनना ही है, और फिर मंथन करो, बाबा से पूछो, बाबा से कंबाइन हो जाओ, बाबा की लगन में मगन हो जाओ, बाबा से लगे बाबा से टचिंग आ रही है, और फिर प्रैक्टिकल स्वरूप में लाते जाओ। तो फिर जब ऐसा फिर समा लेंगे, मन बुद्धि में समा जाएगा, फिर कर्म में लाएंगे तो स्वरूप बनते जाएंगे। एक एक चीज, एक एक दिन की मुरली, 7 दिन की जो अव्यक्त मुरली होती है, पूरे 7 दिन तक रिवाइज करनी चाहिए, बार 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 बार, क्योंकि सबसे मुश्किल होती है ना इसके। एक बात, बहुत सारी बातें होती हैं इस साकार मुरली में। 10 पॉइंट होते हैं लगभग रोज के, 10 मुरली के पॉइंट्स होते हैं साकार मुरली में। इसमें कम से कम 100 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं, 100 पॉइंट ना। अव्यक्त मुरली में 100 पॉइंट होते हैं। साकार मुरली में सबको याद प्यार बाबा देता है, मीठे मीठे बच्चे, मतलब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बाबा की, सभी रूहानी बच्चों को याद प्यार है ना, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, सबको नमस्ते देता है। कि तो साकार अव्यक्त मुरली में बाबा क्या करता है, सदा सुदर्शन चक्रधारी, सदा बेहद के नशे में रहने वाले, सदा बाप से कंबाइंड रहने वाले, ऐसे बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। मतलब जो बाबा के, बाबा अव्यक्त मुरली में सबको नमस्ते नहीं करता, किसको नमस्ते करता है, जो ऐसे बने हैं। तो अव्यक्त मुरली डिफरेंट है ना, है ना, वो संपन्न बनने की है, संपन्न बने हुए के लिए है, जिन्होंने साकार मुरली का स्वरूप बने हैं। पूरा हफ्ता जो मुरली सुनते हो, सुबह से लेकर शाम तक का होमवर्क है, उसको प्रैक्टिकल करो, और फिर संडे वाली मुरली जो है उसको एक हफ्ता तक जेब में रख के रिवाइज करते रहो, बार 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 बार, है ना, दो एक पैराग्राफ एक दिन, एक पैराग्राफ एक दिन, एक पैराग्राफ एक दिन, एक सारा, जरूरी सारा आज ही पढ़ना है, आज ही स्वरूप बनना नहीं, एक 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 थोड़ा थोड़ा पचाओ, ऐसे बहुत सारा खा लो ना, बहुत सारा नहीं खाओ। कई लोग क्या करते हैं, सारे दिन मुरली सुनते रहते हैं, सुनने से कुछ फायदा नहीं है, बार बार सुनने का फायदा नहीं है, काम में लगे रहते हैं, ध्यान कहीं और सुन, कहीं कान में कुछ और सुन रहे, उससे कुछ फायदा नहीं है। हम एक बात सुने ना उसका स्वरूप बन जाए, हम 4 बात सुने, 4 का स्वरूप बन जाए, प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाए, तो फायदा है ना। हमने खा तो लिया, पचाई नहीं, गैस बन रही है, बेहजमी हो रही है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, सब कुछ उल्टी आ रही है, तो क्या फायदा है। जितना खाओ उतना पचाओ, है ना, अच्छे से चबाओ, पचाओ, खून बनाओ, फिर उसे शक्ति बनाओ, है ना, तब है मजा, राइट। तो बाबा की जो मुरली थी, इस मुरली को मैं समझता हूं इतना प्यार से जीवन में लाना चलाने की आवश्यकता है, और ये हमको अभी मिल रही है, थोड़े दिनों में जैसे सैटेलाइट ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे ना, और थोड़े से भूकंप आने शुरू हो जाएंगे, सब रास्ते टूट जाएंगे, आना जाना बंद हो जाएगा, मुरली आने भी बंद हो जाएगी, ये जो इंटरनेट पे आती ना मोबाइल पे, वो मुरली भी आनी बंद हो जाएगी, है ना। सोचते ना अभी तो हम इंटरनेट पे आती है, चलो हम पढ़ लेंगे देख लेंगे, ना कुछ भी नहीं होगा, टीवी भी नहीं होगा, मोबाइल भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। फिर जो समाया हुआ होगा ना, स्वरूप बने होंगे, वही बुद्धि में रहेगा, उसी से हम प्रैक्टिकली लास्ट तपस्या करके वापस घर जाएंगे। खाली खुद नहीं जाएंगे, सबको देके जाएंगे, है ना, हम खाली क्या करने आए हैं, बाबा के मददगार बच्चे हैं, बाबा के सिर मोर बच्चे हैं, मस्तक मणि बच्चे हैं, नैनों के नूर है, तो हम बाबा के साथ सबको सबको मुक्त करा के ले जाएंगे, किसको छोड़ के नहीं जाएंगे, सब तो जाएंगे किंतु सबको भी साथ लेके जाएंगे। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करें।
श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का। का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा